हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जोया ने अबीर सिंह राठौर से कहा था कि उसके कहने पर वो इंडिया तो जा रही है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। अभी जोया कह ही रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। अबीर मुस्कुराने लगा था। अबीर सिंह राठौर की ओर देखने लगी थी। वो सोच रही थी भला ये क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुल गया और रिया और अकरम सामने आ रहे थे। जैसे ही जोया ने रिया और अकरम को देखा, वो खुशी के मारे खड़ी हो गई और दौड़कर उनसे गले मिल गईं। रिया की आंखों में भी आंसू थे। कितने दिनों बाद वो आज जोया को देख रही थी। जोया पहले जैसी नहीं थी, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो उसे देखकर उसके शरीर से ही सब साफ पता चल रहा था। अकरम ने भी जोया को गले लगाया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। तब अबीर ने कहा, तुम्हें अरीबा की चिंता हो रही थी ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई और रिया जी को यहाँ बुला लिया है। ये हमारी बेटी का ध्यान रखेंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही जोया ने ये सुना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और एक तरफ से उसकी आधी से ज़्यादा टेंशन खत्म हो चुकी थी। अब वो अपने मकसद पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी, क्योंकि अब उसे किसी भी तरह की कोई फ़िक्र नहीं थी। तब अबीर सिंह राठौर ने अकरम से कहा, अकरम भाई, आप लोगों को आधी में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना, और अरहम ठाकुर के आदमियों को पता तो नहीं चला ना कि आप लोग कहीं जा रहे हो। तब अकरम मुस्कुराने लगा और बोला, अबीर जी, आपने तो प्लान ही ऐसे बनाया था कि वो लोग पागलों की तरह देखते रह गए। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि हम लोग वहाँ हैं ही नहीं। हुआ ये था कि अबीर ने अपना प्राइवेट जेट अपने बंगले के छत पर ही लैंड करवा दिया था, और रात के तीसरे पहर जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, ठीक उसी वक्त वो जेट रिया और अकरम को लेकर उड़ चुका था। इस बात का पता दूर दूर तक ना तो अरहम के आदमियों को लगा था और ना ही खुद अरहम को। वे लोग उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए थे। अरहम को तो यही लग रहा था कि अभी भी रिया और अकरम अबीर बंशन में हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वे लोग कब के जोया के पास पहुंच चुके थे। अबीर अकरम की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा और जल्दी ही उन सब ने मिलकर एक परिवार की तरह क्वालिटी टाइम बिताया। साथ में खाना खाया, कितनी सारी बातें की, गपशप की। तभी रिया ने जोया से कहा, जोया दी, मानना पड़ेगा, आप तो बिल्कुल टोटली बदल गई हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आपका लुक ऐसा हो जाएगा। रिया की बात सुनकर जोया मुस्कुराने लगी और बोली, अगर मुझे किसी ने बदला है तो वो सिर्फ और सिर्फ अबीर सिंह राठौर है। तुम जानती हो रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में मुझसे कोई इतना प्यार करने वाला आएगा। अबीर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शायद अब तो मैं भी उनसे प्यार करने लगी हूँ। जैसे ही रिया ने ये सुना, वो खुशी के मारे जोया से लिपट गई और बोली, आपकी ज़िंदगी में अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ हों, किसी भी तरह का कोई गम ना हो। जोया ने उसकी बात सुनकर बदले में आमीन कहा। तभी जोया ने रिया से कहा, अभी मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ तब तक अधूरी हैं जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती। तुम जानती हो, मैंने तो अपने जीने की पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मेरे अंदर एक हिम्मत को जन्म दिया था अबीर सिंह राठौर ने। उन्होंने मुझे हिम्मत से लड़ना जीना तो सिखाया ही, साथ ही साथ उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं इस तरह से अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे उनसे इस तरह से बदला लेना है कि वे खुद मुझे मौत की भीख मांगे और मैं उन्हें मौत भी ना दे सकूं। जोया ने बड़ी ही नफरत के साथ कहा। जल्दी ही अब जोया सीधा वहां से इंडिया जाने वाली थी। ये बात फाइनल थी। और जिस दिन जोया इंडिया जाने वाली थी, उसी दिन अरमान ठाकुर और महेश ठाकुर, साथ ही साथ राजवीर सिंघानिया की कंपनी की जिंदगी की सबसे बड़ी डील होने वाली थी। और वो डील किसे मिलने वाली थी, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन वे दोनों अपने अपने सिरे से उस डील को हासिल करने के लिए अपने बेस्ट वर्कर से प्रेजेंटेशन तैयार करवाने लगे थे। जिसको भी, जिस भी कंपनी की प्रेजेंटेशन विदेशी कंपनी के सीईओ को पसंद आएगी, उसे ही वो प्रोजेक्ट मिलने वाला था। ये बात तय थी। और इस रेस में राजवीर सिंघानिया की कंपनी और अरमान ठाकुर की कंपनी के साथ साथ पांच और ऐसी कंपनियां थीं जो इस रेस में कूदी हुई थीं। लेकिन अरमान को कहीं ना कहीं इस बात का पूरा यकीन था कि वो प्रोजेक्ट किसी को नहीं बल्कि उसी की कंपनी को मिलेगा, क्योंकि उसकी कंपनी उस वक्त देश की नंबर वन कंपनियों में से एक थी। रात हो चली थी, सभी अपने कमरों में आराम कर रहे थे। जोया अबीर के साथ थी, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तब अबीर ने जोया से कहा, कल आपकी जिंदगी का बहुत ही बड़ा दिन शुरू होने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हर तरह से तैयार रहें। आपको डरने की या किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देना है। और याद रहे, आपको सब कुछ इस तरह से हैंडल करना होगा कि कोई आपका मुकाबला ना कर पाए। जोया बड़े ध्यान से अबीर की बातें सुन रही थी और फिर बोली, क्या आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो? जैसे ही जोया ने ये कहा, अबीर उसकी ओर हैरानी से देखने लगा और बोला, चलने को तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, पर ये मत समझना कि तुम अकेली जा रही हो, क्योंकि मेरी नज़र 24 घंटे तुम पर होगी और तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ हाजिर हो जाऊँगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी लड़ाई है और इसे तुम्हें ही लड़ना होगा। अगर मुझे तुम्हारे दुश्मनों को मारना होता तो मैं अब तक उनको खत्म कर चुका होता, अब तक तो उनकी हड्डियां तक गल गई होती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने दुश्मनों को तुम अपने हाथों से सजा दो। अबीर की बातें सुनकर जोया की आंखों के किनारे भीग गए और उसने उसे गले लगा लिया। और जोया को इतने करीब पाकर अबीर भी थोड़ा सा बहकने लगा और उसने उसके माथे पर किस कर दिया। जोया अबीर से चिपकी जा रही थी, उसने उसे बहुत तेज से गले लगाया था, तब अबीर ने उसके गाल पर किस कर दिया। उसके बाद जोया उससे और ज्यादा चिपक गई, तब धीरे धीरे अबीर ने उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया। जल्दी ही वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। ये एक भावुक पल था जो उस वक्त एक दूसरे के प्यार की दोनों की जरूरत थी। जल्दी ही उनके कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे और दोनों आज पूरी तरह से एक हो गए थे। जोया ने अबीर को पूरे दिल से अपना लिया था और उन दोनों के बीच जो एक पर्दा सा बाकी था वो आज पूरी तरह से हट चुका था। जोया पूरी तरह से अबीर सिंह राठौर की हो चुकी थी। अबीर सिंह राठौर की जिंदगी में पहली बार कोई लड़की आई थी और किसी लड़की को उसने छुआ था। लड़की का स्पर्श उसे कितना सुकून दे रहा था वो उस वक्त सिर्फ अपने होठों से बता रहा था। सब कुछ भूलकर जोया अबीर की बाहों में खो गई थी और दोनों एक दूसरे को पूरी रात प्यार करते हुए उन्हीं हालातों में सो गए थे।